हरे कृष्ण। तो आज एक पावन तिथि है, श्री जयदेव गोस्वामी जो भगवान के निज जन थे, विशेष करके श्री जगन्नाथ देव के अति प्रिय थे, जिन्होंने हम लोग के लिए भगवान की गीत गोविंद दिए हैं। वो गीत गोविंद भगवान के लिए इतने प्रिय है कि जगन्नाथ भगवान तो प्रतिदिन सुबह शाम सुनते भी हैं और उसको वस्त्र में लिख करके हृदय में धारण करके सोते हैं। जगन्नाथ भगवान जब शयन में जाते हैं तो गीत गोविंद वस्त्र जब तक नहीं पहनेंगे तब तक सोएंगे नहीं, गीत गोविंद पाठ खंडा लगा करके सोते हैं। इतने प्रिय है उनके, गोविंद के गीत है जिन्होंने रचना किए थे जयदेव गोस्वामी। उन्होंने रचना किए थे आंखों देखा हाल, देख रहे थे लीला को, लिख रहे थे, ऐसे नहीं कि रचना। तो इसे भक्त भगवत भक्त के आज तिरुभाव तिथि है तो उनके बारे में थोड़ा चर्चा करना उचित होगा। तो जयदेव गोस्वामी की रचित गीत गोविंद से तो हम नहीं, लेकिन उनके गीत गोविंद के प्रारंभ है एक जो गीत लिखे हैं रचना किए जिनका नाम है मंगल गीतम, जो प्रतिदिन श्री जगन्नाथ मंदिर के मंगल आरती में गाया जाता है। जैसे हम लोग बिहावरी से गाते हैं, श्री जगन्नाथपुरी में जो प्रतिदिन मंगल आरती होता है ठाकुर जी के प्रथम दर्शन, उसमें जो गीत गाया जाता है उसको तो मंगल गीतम, उसका नाम ही मंगल गीतम है, उसे गाने से मंगल ही होता है, इसलिए गीत का नाम मंगल गीत है। तो उसको शुरू करते हैं तो सभी का मंगल होगा ऐसा करते हैं। तो मैं नहीं जानता हूं आप लोग इसको गाते हैं कि नहीं, मैं अपने हिसाब से गाऊंगा, मैं अच्छे सिंगर नहीं हूं, तो माफ कर देना पहले, और मेरे पीछे पीछे आप प्रयास करेंगे गाने के लिए। श्रीत कमलाकुच मंडल धृत कुंडल है, श्रीत कमलाकुच मंडल है धृत कुंडल है धृत कुंडल है, श्रीत कमलाकुच मंडल है धृत कुंडल है धृत कुंडल कलित ललित वनमाला धृत कुंडल कलित ललित वनमाला जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय देव हरे। दिनमणि मंडल मंडन है भव खंडन है, दिनमणि मंडल मंडन है भव खंडन मुनि जन मानस हंस मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे जय जय भजनंद दुलाल हरि जसुमति बाल जय जय देव हरे जय जय पालीय विषधर गंजन है जनरंजन है आधार अनजाना है जाना जाना राम जाना जादू कुला नाली नदी ने सा जाना राम जाना जादू कुला नाली नदी ने सा जाया जाया दे बहारे जाया 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 दे बहारे जाया 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 दे बहारे मधुमूरा नरक विनाशन है गरुड़ासन है मधुमूरा गरुड़ासन सुरकुल खेली निदान गरुड़ासन सुरकुल खेली निदान जय जय देव हरे जय 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 देव हरे जय 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 देव हरे कमल कमल दल लोचन हे भव मोचन हे कमल कमल दल लोचन भव मोचन त्रिभुवन पवन निधान भव मोचन भवन निधान जय जय देव हरे जय जनक सुता कृत भूषण है जीत दूषण है जनक सुता दूषण समर समित दश कंठ जीत दूषण जय जय देव हरे जय जय देव हरे अभिनव जलधर सुंदर हे प्रीत मंदर हे अभिनव प्रीत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोरा मंदर श्रीमुख चंद्र चकोरा जय जय देव हरे जय जय देव हरे चरणे प्रणता वयम है इति भावय है कव चरणे प्रणता वयम है इति भावय है इति भावय कुरु कुशलं प्रणतेषु इति भ कुशाणं प्राणकेशो जय जय देव हरे जय भजनन्द दुलाला वसुदेव बाला जय जय देव हरे जय देव कबेरिदं हे गुरुदे मृदं हे श्री जय देव कबेरिदं गुरुते मृदं मंगलमुज्ज्वल गीतम् मृदं मङ्गलमुज्ज्वल गीता जय जय देव हरे जय 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 देव हरे जय जय देव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नितारे गौर हरिबो 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 हरिबो
श्री जयदेव गोस्वामी की समवेत भक्त वृंद की श्री मंगल गीतम की तो श्री जयदेव गोस्वामी ने गीत गोविंद रचना से पहले मंगल मुज्ज्वल गीतम श्री जयदेव कबीरिदम मुदित मुदारम मंगल मुज्ज्वल गीतम ये उज्ज्वल मंगल गीत को रचना करके फिर गोविंद के गीत को रचना किए थे। तो
इसलिए कलयुग के उपास्य देव श्री जगन्नाथ जी ने प्रतिदिन मंगल मुहूर्त में इस गीत को सुनते हैं, उनकी रचना है। तो इसे कहा गया है, जबकि दो मत है श्री जयदेव गोस्वामी के प्राकट्य के बारे में, हाईकोर्ट में केस भी होकर डिसीजन हो चुका है क्योंकि जयदेव गोस्वामी उत्कलवासी थे, केंदुबिल्ले ग्राम ओडिशा में है, उनका पीठ सब कुछ है, लेकिन बंगाल के लोग बोलते हैं कि वो यहां थे, बाद में ओडिशा गए थे। जो भी हो, हम इस दुविधा में नहीं फंसे, हम भक्ति विनोद ठाकुर आप लोग नवदी मंडल परिक्रमा करने जाते हैं, नवदी मंडल परिक्रमा में ये बात लिखे हैं, बेलपुकुर के पास मायापुर श्री जो जगपीठ है उससे दिखाई पड़ता है जयदेव टीला, है ना, वो भी केंदुबिल्ले यहां भी है। तो वहां जयदेव टीला से बोलते हैं कि वहीं जन्म हुआ था भक्ति विनोद ठाकुर, का मानना ही पड़ेगा, वी हैव नो चॉइस, भले हाईकोर्ट डिसीजन दे दे ओडिशा के फेवर में, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। भक्ति विनोद ठाकुर बोले कि नहीं, यहीं प्रकट हुए थे, तो कल्प भेद में हो सकता है। जो भी हो, आप जब जाएंगे देखेंगे बिल्कुल जयदेव टीला एक स्कंद के द्वारा एक बनाया गया है, वहां स्तूप भी वहां पे उनको प्रकट हुआ था गंगा किनारे। तो वहां पे उन्होंने ब्राह्मण परिवार में प्रकट हुए थे, तो बाल्यकाल से वैराग्य था, तो उन्होंने गृह त्याग करके भजन कर रहे थे, तो एकांत में रहकर भजन कर रहे थे, गीत रचना कर रहे थे। तो नवदीप में तभी जमाने में जो कवि वृंद थे, तभी जो राजा थे, बिलाल सेन के वंशधर लक्ष्मण सेन थे, तो उनको पता चला इतने बड़े कवि हैं, तो उनको एक बार हमने बुलाए अपने राजसभा में, बुलाकर उन्होंने कविता को पढ़े, देखकर इतने प्रभावित हुए, बोले आप हमारे रॉयल पोर्ट हमारे राज कवि बन जाओ, हमारे राज दरबार में कवि बन जाओ, तो हमारे लिए कविता लिखो। तो जयदेव गोस्वामी स्टेट बोले कि अगर आप ऐसा करेंगे मैं आपके लिए लिख नहीं सकता, मैं लिखूंगा तो केवल गोविंद के लिए लिखूंगा और किसी के लिए नहीं, आप मुझे ऐसे करेंगे तो मैं राज्य छोड़कर चला जाऊंगा, ऐसी धमकी दे। तो लक्ष्मण सेन बोले नहीं नहीं भाई, आप ऐसा मत करो, ठीक है आप जाइए, आप कहां रहना चाहते हैं, एकांत में। वो उनको लेकर के गंगा किनारे उस तरफ चापाहाटी में उनको एक सुंदर कुटिया निर्माण कर दी, बोले कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप मत छोड़कर जाइए हमारा राज्य, आप हमारे राज्य की एक आप संपत्ति है, शोभा है, आप मत जाइए। तो उनको वहां चापाहाटी आप जब जाएंगे नवदीप मंडल परिक्रमा में, वो आता है एक स्थान आता है चापाहाटी, जहां पर श्री गदाधर पंडित के घर है और बाणीनाथ जी के उपासित गौर गदाधर विग्रह दर्शन करेंगे। वो विग्रह श्रीमन महाप्रभु के समय के विग्रह, महाप्रभु स्वयं दिए थे बाणीनाथ जी को, गदाधर जी के भाई को, गौर गदाधर विग्रह। वहां पर बहुत पहले चेतन महाप्रभु से प्रकट होने से कई सौ साल पहले की बात है ये। तो वहां श्री जयदेव जी रह करके अपने भजन कर रहे थे और अपने उपास्य अनुभक्त थे, राधा माधव की सेवा कर रहे थे। तो यहाँ बहुत सुंदर सुंदर स्वर्ण चंपा, चंपा वृक्ष आपके इधर है कि नहीं पता नहीं, चंपा फूल के वृक्ष था, तो उन्हें चंपा फूल तोड़ करके राधा माधव की उपासना भी करते थे। तो एक दिन उन्होंने हठात देखे कि उनके सामने बिल्कुल सोने जैसे चमचमाते हुए विशाल शरीर श्रीमन गौरांग महाप्रभु खड़े हैं। गौरांग महाप्रभु प्रकट नहीं होते, कई सौ साल पहले की बात है उनसे पहले। तो पहले गौरांग महाप्रभु एडवांस उनको दर्शन दिए, अभी प्रकट नहीं हुआ था उनका। उनको दर्शन दे करके उन्होंने देखे कि राधा माधव एक होते हैं, गौरांग ग्रुप में हो जाते हैं, फिर राधा माधव हो जाते हैं, फिर एक उनके अल्टर में उनको देखे, फिर बोले तो उनको मैंने स्तुति की, प्रार्थना की, आप कैसे नाम मैं बोलता हूं, मैं अभी आने वाला हूं यहां पर, आप मैं तुम्हारा गीत को बहुत आस्वादन करूंगा, लेकिन तुम्हारा स्थान ये नहीं है, तुम इधर क्यों रहता है ना, फिर मुझे राजा ने अब डिस्टर्ब नहीं करता है, गंगा किनारे इसी चंपकरण्य में मैं रहता हूं, नहीं 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 आप यहां नहीं, मेरे आदेश से आप जाओ जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ जी आपके लिए वेट करके बैठे हैं, तू इधर टाइम खराब कर रहा है, जाओ। अब ना चाहते हुए बोले मैं गंगा स्नान, बोले सब गंगा अपना अरेंजमेंट हो जाएगा, जगन्नाथ जी करेंगे, आप जाओ, उनको भगा दे। नवदीप बोले जाओ। तो स्वयं गौरांग महाप्रभु दर्शन दे करके उनको आदेश करके और उस सपाहाड़ी से नवदीप से उनको जगन्नाथपुरी भेज दिए। बैरागी तो थे ही, युवक अवस्था था, कुछ था नहीं, भीख मांग कर खाते थे। वहां एक कुटिया राजा ने कर दिया था, अभी चलना पड़ा उठा करे, कुछ समन तो कुछ ज्यादा था नहीं, कुछ लेखनी और पोथी और एक दो धोती बहिर्वास कुर्ता फुर्ता तब जहां उनको पहनते नहीं, टेलर फेलर थे नहीं, कुछ लिखने कुछ झंझट नहीं था। एक कपड़ा ओढ़ लिए, एक कपड़ा कोपिन पहन लिए, खत्म। तो चल पड़े थे पैदल में, चलते चलते जगन्नाथपुरी पहुंचे। पुरी पहुंच करके तो भीख मांगे ब्राह्मण थे, कोई उनका क्या कोई गेस्ट हाउस बुकिंग करना रिजर्वेशन कोई जरूरत तो था नहीं। जाके पहुंचे, पहुंच करके एक अच्छा वृक्ष देख करके उसके नीचे अपना आसन लगा लिए, कपड़ा बिछा लिए और यहाँ बैठ करके भीख मांग कर ला के प्रसाद पाए, वहीं शयन किए। सुबह उठ करके जगन्नाथ जी के दर्शन में गए, दर्शन करके जगन्नाथ जी की स्तुति प्रार्थना करके फिर आकर भीख मांग के अपना जो काम वहीं रहने लगे। नित्य प्रति वहीं करते थे, जगन्नाथ जी को दर्शन करना, उनके सामने स्तुति कीर्तन करना और फिर थोड़ा भिक्षा मांग कर प्रसाद पा करके फिर अपना लेखनी वही करते थे। वो पेड़ के नीचे रहते थे, उनको तो ना तो कोई मच्छरदानी ना एसी रूम कुछ था नहीं, कोई आशा भी नहीं था। तब जमाने में मच्छर पच्छर भी होते नहीं होते, सब बहुत सुंदर व्यवस्था था। तो हुआ क्या, जगन्नाथपुरी में एक और ब्राह्मण रहते थे, बेचारे इतने धनी नहीं थे, ब्राह्मण लोग धनी होते ही नहीं, तो उनका कोई संतान नहीं थे, वो गृहस्थ थे। तो उन्होंने आकर जगन्नाथ जी को बड़े प्रार्थना करते थे। एक बार उन्होंने प्रार्थना करके पति पत्नी दोनों आके ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़कर जगन्नाथ जी से बोले, हे प्रभु अगर हमारा कोई भी संतान होगा हम बोलते हैं हम बिल्कुल आसान है हम आपको दे देंगे, आपके सेवा के लिए दे देंगे जो भी होगा, प्लीज हम निसंतान मत रखिए, कुछ तो दीजिए। तो इसे कंडीशन करके गए, तो देखिए जल्दी से उनके पत्नी गर्भधारण की, तो बड़े प्रसन्न हुए, बोले देखो ठाकुर जी ने दिए अब उनके लिए जाएगा वो तो लड़का, हमारा तो होगा नहीं जो भी हो। तो हुआ क्या, वो चाहते थे कि बेटा होगा भगत तो बनाएंगे, लेकिन एक बेटी हुआ। अब बोले उसको कैसे करेंगे, वो तो मंदिर में कोई लेंगे नहीं, उसको अक्षत नहीं करेंगे, उसको क्या करें, जो भी हो। अब जगन्नाथ जी दे दिए कन्या और तो उनको पालन लालन किए। जब तभी जमाने में इतने देर लेट तक वेट नहीं करते थे, जैसे 12-14 साल की हो गई लड़की तब उनको लेकर के पिताजी लेकर के आए, आकर ठाकुर जी के सामने बोले अब संभालिए आप, हम गरीब हैं, हम उनसे शादी वादी नहीं कर सकते, कहां ढूंढेंगे, कहां ये सब दहेज फहेज सब दुनिया भरी, हम गरीब लोग हैं, अभी आप ही के दिया हुआ है, हम कंडीशन पहले से किए थे एडवांस कि जो होगा आपके ही सेवक होगा, ये आपका सेवक आप लीजिए, आप कहीं शादी कराइए कुछ कराइए, आप जाने सो जाने। जाने के सामने लगे थोड़ी देर, बोली बेटी आप देखो ठाकुर जी आप यही रहना, तू मांग कर खाना भी कर जो करना, मेरे से अब बचो मैं तुझे छोड़ दू। तो जगन्नाथ जी उनको फिर आदेश दिए, स्वप्नादेश के बोले हे ब्राह्मण ठीक है वो मेरा ही है, लेकिन मेरे लिए उनके लिए व्यवस्था कर चुका हूं, क्या मैं उनके शादी के लिए उनके लिए वर ढूंढ कर रखा हूं, आप क्यों मेरे मंदिर में छोड़ जाता है, उसको उनके पति के पास छोड़ देना, पति कहां है न लिखो एड्रेस। तो जगन्नाथ जी ने आईडी प्रूफ दिए, बोले जाओ ज्यादा दूर नहीं यहीं पे है, और कैसे उनका कॉलोनी क्या के घर का एड्रेस, कोई एड्रेस वाड्रेस नहीं, पेड़ जो है ना पेड़ के नीचे वही एड्रेस उसका, कोई घर घाटी है नहीं उसका। और ठाकुर जी ने बोले तो उन्होंने अपने कन्या को लेकर के मंदिर से निकल करके जो ठाकुर जी ने बताए थे उसी दिशा पर चले, जाकर देखे कि एक कोपिनधारी भिखारी ब्राह्मण बैठकर कुछ लिखापड़ा कर रहा है, पेड़ के नीचे आसन लगाया। आप बोली ऐसी कूड़, ठाकुर जी ने हमारे दामाद करके चुने हैं, अलग जो है मैं क्या करूं। और ठाकुर जी का आदेश है, जाकर उनके पास पहुंचे, उठे भाई कि आप लोग किस लिए आए हैं, ना आप क्षमा करें जगन्नाथ जी ने भेजे आपको, जगन्नाथ जी भेजे क्या बात है, किस लिए आते हैं क्या, ना उनको आप स्वीकार कीजिए। बेटी को बोले उनको मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं शादी नहीं करूंगी, तो भिखारी मेरा कुछ भी नहीं, उनको कैसे हम शादी नहीं करेंगे, नहीं 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 आपको शादी नहीं हम नहीं करेंगे प्लीज, बोले हम नहीं जानते और उसको आप स्वीकार कीजिए। वो डर के पीछे हटे, बोले देखो आप पीछे हटने से नहीं होगा, बोले बेटी ये आपके पति आप रहो हम जा रहे हैं। उनको छोड़ करके उनके पिताजी चल पड़े, अरे रोको रोको सुने नहीं, बोले हम नहीं सुनने वाले, हम कहां जाके जो व्यवस्था करेंगे। वो आप ठाकुर जी ने बोले आपके नाम लेकर बोले हैं, प्रॉपर एड्रेस देकर बोले, हम थोड़ी आदत है, तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। फंस गए बेचारे, अब क्या करें, अब ठाकुर जी का आदेश, अब सोच रहे थे क्या करूं, इतने में उनके बेटी का नाम था पद्मावती, वो आकर चरण में गिर गई। बोले स्वामी ये दासी को स्वीकार कीजिए, मेरे सामने ठाकुर जी ने आदेश किए हैं, तो आप मेरे स्वामी हो ना, मेरा कोई घर ही नहीं है, मैं पेड़ के नीचे रहता हूं ना, मैं भी पेड़ के नीचे रह जाऊंगी, मेरे कोई खाने की व्यवस्था नहीं, किचन नहीं, कुछ नहीं, भीख मांगकर खाता हूं, दो रोटी उसी में चलता है, मैं भी वही रोटी में गुजारा कर लूंगी, पहनने के लिए तो देख रहा है मेरा क्या अवस्था, मेरा भी एक वस्त्र में रह जाऊंगी, कोई नहाना घाट बाथरूम ये प्रसाधान व्यवस्था कुछ भी नहीं है, चलेगा, आप भिखारी है, मैं भिखारी नहीं हूं, उसमें क्या, जैसे पति हैं ऐसी पत्नी, आपके स्वभाव के अनुरूप में रहूंगी, और मुझे अब दूर मत कीजिए, आपके चरण की सेवा से मुझे स्वीकार कीजिए। और जब हर कंडीशन में ओके हो गया तो बोले चलेगा, उसमें क्या है, अधिकारी तो है, अधिकारी नहीं बनने की कोई तैयार है तो क्या प्रॉब्लम है, चलो। अब श्री जयदेव जी हमेशा चाहते थे गोविंद जी के गीत रचना करने के लिए, लेकिन उनको होता ही नहीं था, जैसे हम लोग कोई प्रोजेक्ट दिया जाए हमसे क्या हो गया, टाइम ही नहीं मिलता, क्या करूं, और थोड़ा टाइम चाहिए, है ना, समय का बहुत बड़ा पाबंदी होता है। तो जयदेव जी उनका मन में संकल्प किए थे गोविंद जी गीत रचना करने के लिए, लेकिन स्वयं को सुबह उठकर जगन्नाथ मंदिर जाना पड़ता था, वहां से आकर के अपने क्रिया खत्म करके भीख मांगने जाना पड़ता था, भीख मांगने की जरूरी थोड़ी है कि घर मिल जाए, कभी 2-5 किलोमीटर चलना पड़े, हम घूम घाम कर कैसे लाए, अब कोई कच्चा पक्का मिले, कोई दे दे चावल उसको कैसे खाए, कोई मटका लाए उसको गर्म करे, भात बनाए खाए, कभी कोई तो इसे कच्चा, कैसे भी बड़े मुश्किल होता था, भीख मांगना पड़ता था, कुछ भी करना पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता था, सेवा भी राधा माधव थे उनको भी करना पड़ता था, तो उनके पास टाइम नहीं होता था वेट करके लिखने के लिए, मन में तो विचार करते थे, समय होता मैं अभी कर लिया होता, लेकिन नहीं होता, जगन्नाथ जी तो अंतर्यामी है, सेवक भेज दिए, सेवक व्यवस्था कर दिए, वो तो सोचे भी नहीं थे, वो पद्मावती अब तो जबरदस्ती शादी करना ही पड़ा उनको, शादी करके रखे लो, दूसरे दिन से ही उनको और भिक्षा मांगने नहीं जाना पड़ा, बोले स्वामी आप नहीं मैं आ गई ना, तो उन्होंने गए भिक्षा मांगने के लिए, वो स्वयं भिक्षा मांगकर लाती थी, उनके वस्त्र पर ख्यालन करती थी, जो पेड़ के नीचे जो आसन लगाए थे उनको साफ सुफ करती थी, उनके लिए मिट्टी के बर्तन को टूटा फूटा ला करके उसमें लकड़ी जला करके उनको अन्न बनाकर देती थी, जो भी उनके पास उपलब्ध होता था भोजन लगाकर राधा माधव को भोग लगा करके, उनको कुछ नहीं करना पड़ता था, सारे काम उन्होंने की। और दिन पर दिन तो कभी कभी वस्त्र फट जाता था तो जाकर के दूसरे से कहीं से कपड़ा मांग कर आकर सिलाई करके वो भी देती थी पति के लिए। अब जयदेव गोस्वामी को तो कुछ नहीं करना पड़ा, उठ के सांध के जगन्नाथ जी को प्रणाम के पास बैठे लिखे, बैठे बैठे सब व्यवस्था, खान पान रहन सहन की व्यवस्था सब कुछ करने लगे, वो इतने चिंता शून्य हो गए, इतने अपने आप को तृप्त महसूस किए कि देखो ठाकुर जी ने बिल्कुल सही किए, ऐसे सेविका मुझे दिए, वो तो सब इतने बढ़िया सुंदर से ढंग से कर लेती है, और मुझे तो केवल भगवान के चिंतन करके उनके गीत रचना करने के लिए सुयोग मिला, बहुत अपने आप को सौभाग्यवान माने किए और करके उन्होंने अपने गीत रचना में आगे बढ़े। और पद्मावती तो संकल्प कर ली कि मेरे जीवन केवल उनकी सेवा करना ही है, जितने कष्ट उठा करके एक टूटी फूटी मैले कुचली वस्त्र पहन करके और बाल जटासी हो चुकी है, कोई कंघी नहीं था कंघी करने के लिए, तेल फेल तो स्वप्न की बात है, ऐसे भीख मांग करके पति की सेवा और उनके साधना से सहायता करती थी, वो एक पेड़ के नीचे रहने लगे दोनों। तो जब इस प्रकार जयदेव गोस्वामी जब लिखते थे वो तो बैठ करके सीधा, जब ध्यान से बैठते थे सीधा बैठ करके वृंदावन में कुंज में भगवान कृष्ण गोपियों के साथ क्या लीला करते हैं, साक्षात दर्शन करते थे, देखते हुए लिखते थे, ऐसा नहीं है कि सोच विचार करके लिखते हैं कर दे, नहीं नहीं नहीं, आंखों देखा हाल, डायरेक्ट देख रहे हो लिख रहे हैं ऐसे करते थे। तो एक दिन उन्होंने एक लीला अद्भुत देखी और उसको लिखने के लिए उनका पेन चला नहीं, बोले ये इसे किसे लिखूं, क्या दिखे, देखिए माननी राधिका तो अनेक समय मान कर जाती है, मान करना जानते ना, मान किसको कहते हैं, रूठ जाना, माता जी जानते हैं रूठ जाना, अभ्यास होगा उनका, रूठ जाना, रूठ क्यों जाते हैं, पुरुष लोग क्योंकि रुटते हैं, रुटते भी नहीं, ऐसा नहीं, रुटना तो सबको पता है। रुटते क्यों मालूम है ना, क्यों मांग कई कर लेते हैं जब, और रुटते किसी का ऊपर जानते ना, ये देखिए ये सिद्धांत है, हमेशा मान या रुठना उन्हीं का ऊपर होगा जो आप, जिसको आप अपना मानते होंगे। शत्रु के ऊपर कभी रुठते नहीं है, गुस्सा करते हैं, झगड़ा करते हैं, जिनको आप अपना मानते होंगे, ये तो मेरे ही हैं, और उनसे उनसे आप कोई विशेष व्यवहार आशा करते हैं, कोई ऐसा करेंगे जरूर, अगर ऐसा नहीं किए तो आप, अच्छा उन्होंने ऐसे नहीं किए, तब तो मान हो, अभिमान हो जाएगा, रुठना हो जाए। जिनको आप अति अपना मानते होंगे, अपना अधिकार समझते होंगे जिसके ऊपर, वो अपने मनचाही काम जब ना किए तब रुठना होता है, है ना। तो आप समझ गए होंगे, तो अपने पारिवारिक ऐसे ही होता होगा। तो इसलिए राधारानी के भाव ही था कृष्ण के प्रति, राधारानी वाम नायिका है, उनका मन के कृष्ण के प्रति ये भाव था, कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण तो 100% मेरे हैं, तो वो क्यों ऐसा किए, मेरे चीज ऐसा किसे हो सकता, तो इसलिए रुक जाती थी। यद्यपि दूसरे पंथ जो दक्षिण नायिका जो चंद्रावली आदि थे, वो सोचते हम तो कृष्ण के हैं, उनके दासी हैं, उनका जो इच्छा सो करे, मारे पिटे आए न आए, दुख दे सुख दे, कुछ करे, तो कुछ बोल नहीं सकते, वही हम नो राइट, हम दासी है, हमारा कोई राइट नहीं, कुछ बोल नहीं सकते, वो मालिक है, जो मर्जी सो करे। लेकिन राधारानी की दूसरी भाव थी, बोले नहीं कृष्ण मेरा, मैं मालकिन हूं, मेरे हैं, मेरे समान है, मेरे समान इधर उधर कैसे हो जाए। तो इसीलिए बोल नहीं पाएंगे, जब कृष्ण कभी चतुराई करते थे तो रूट जाते थे, अब डेली दो चार बार होता था ऐसा, और कृष्ण मनाते थे, मना करके एक्सक्यूज मी सर करके जैसे पटाते थे, लेकिन एक बार ऐसे हुआ। अब राधारानी तो रासेश्वरी है, उनके बिना तो रास हो ही नहीं सकता है, तो भगवान रास में थे, तो अनेक गोपियां थी, अब राधारानी देखी कि प्रत्येक गोपियां के साथ कृष्ण है, तो बोले तो फिर तो वो मेरे स्पेशल क्या है, नॉर्मल सबके साथ मैं भी हुई, सबके साथ नाच रहे, मेरे साथ भी नाच रहे, बोले वो तो फिर क्या है, तो मान के बोले सबके साथ जैसे मेरे साथ भी ऐसे। अब देखे ना, कोई पत्नी होगा होगी, और देखेगा उनके पत्नी दूसरे भी स्त्रियों के साथ जैसे भारत में उनके साथ, तो रुट जाएगी, बोले व्हाट इज दिस, तो राधारानी रुट गई, रुट करके मानिनी हो गई, चल पड़ी, उनको तो बड़े शक लगा, बोले तो सबके साथ जैसे हुआ मेरे साथ भी ऐसे करते हैं, तो अकेली मानवती होकर के चल पड़ी रास से निकल करके। अब भगवान ने नजर की, बोले है ही नहीं, बोले उनके बिना तो रास में आनंद ही नहीं है, तो भगवान ने भी अकेले निकल पड़े, सभी असंख्य गोपियां हैं उनके साथ, भगवान ने छोड़ करके अकेले निकल पड़े ढूंढते हुए निकले। राधारानी कहां गई, ढूंढते रानी कृष्ण को छोड़कर तो गुस्सा होकर चली गई, लेकिन जाकर करेगी क्या, उनको दुख होता, क्यों छोड़कर आई, बढ़कर रोती थी, मैं उनको छोड़कर आई, मेरे तो प्राणेश्वर वही है, अब उनको अकेले छोड़कर आ गई, क्या करूं, लेकिन उन्हें इसे क्यों कर रहे हैं, अब उनके बिना दुख भी बड़ा विरह होता है, बड़ा दुख होता है, और इसे क्यों करते हैं, इसलिए गुस्सा भी होता है। ये दोनों भाव से भावित होकर के राधारानी वृंदावन से निकली, जमुना पार करके उस तरफ जा करके एक एकांत जगह बैठ करके रोने लगी, बड़ी दुख रोने लगी। अब भगवान ने ढूंढते ढूंढते परेशान वृंदावन ढूंढ लिए, अब देखे रात्रि प्रांत में और आवाज आ रहा है रोने का, भगवान समझ लिए तो रो रही होगी, लेकिन कहां रो रही है, कहां से आवाज आ रहा है, पता लगा देखे जमुना के उस पार। तो जमुना पार किए, जमुना पार करके गए, जाके देखे एक पेड़ के नीचे बैठ करके राधा जी अकेली रो रही है, अब इतने रो रही है, इतने रो रही है कि दोनों आंख से इतने जलधारा बहन बहा कि वहां के तालाब बन चुका है कुंड, एक कुंड आज भी है, आपको भी जाएंगे देखने के लिए, कुंड का नाम है मानसरोवर, मानसरोवर की राधा रानी के मान के कारण इतनी रोई थी, ये मान के कारण एक तालाब बन के मानसरोवर है, माननी राधिका का मान की जल है, आंसू की भरा हुआ पानी मानसरोवर। तो ब्रज में एक बड़े सुंदर पावन स्थान है मानसरोवर, तो मानसरोवर पूरे भर गया पानी, तालाब भर के जमुना जी में पानी चलने लगा। बहुत उनका मन नहीं होती सोना रोना, और जब बहुत दुख में कोई स्त्री रोती है बिल्कुल इसे आवाज करके रोते हैं, बिल्कुल इस राह पकड़ते धार धार आंसू बहती है रोती है, तो भगवान देख लिए बोले बहुत दुखी है आज बहुत, अब तो उनको हाइडोज देना पड़ेगा उनको बचाने के लिए, अलग अलग दिन में थोड़ा सा कुछ बोल दे कुछ एक कर ले पटा ले मन जाती थी, लेकिन आज तो विशेष माननी है। और कैसे तो भगवान ने गए तैयार होकर जा करके, जैसे देख लिए भगवान ने आ रहे हैं स्वाभाविक है, कोई स्त्री देख लिए कि अब पति आ गए मेरे बस में आ रहे हैं तब आपने ये दिखाएंगे शाम, तो राधारानी समझ कर बैठ साइड बैठ गए ठीक है, अभी तक तो नहीं आ रहे थे रोती थी, अब जब आ गए सामने बोला कि अब तो काम बनने वाला है, अब आ गए देखे अब तो बिल्कुल कस करके बैठी भी नहीं सुनने, अब मन में सोचा था कि क्या करूं मैं चली जाऊं नहीं आ रहे हैं फोन भी नहीं कर रहे हैं क्या करूं चली जाऊं, लेकिन रो रहे थे, जब देखे कि आ ही गए तब क्रोध और रूठा और बढ़ गया भाव, बढ़ करके बिल्कुल कस करके बैठ गई, भगवान जाकर के हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि जो हो गया माफ कर दीजिए और नहीं होगा, कान पकड़े नाक पकड़े प्रणाम किए नहीं इसे करके बैठती नहीं नहीं मानना, भगवान ने बहुत प्रार्थना किए बोले आप तो छोड़ो और कोई नहीं प्लीज नहीं माना, तो भगवान को पूर्ण समर्पण करना पड़ा। जैसे भगवान ने कहते हैं कि परम धर्म ही है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, सब कुछ छोड़ करके केवल एकम मेरा ही शरण करना चाहिए, ये भगवान को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दिखाना पड़ा, सर्व सब परित्याग करके एकमात्र श्री राधा जी के शरण में भगवान हो गए, प्रणाम के दंडवत पड़ गए, फिर भी नहीं मानते, उठ कर देखे तभी नहीं बोले ठीक है, बोले सर शरणागति पूरा नहीं हुआ तो मेरे पास क्या संपत्ति है, तो आपने मयूर मुकुट निकाले, मयूर मुकुट निकाल के धर दिए, बोले यही तो है था मेरा पास, मेरा कोई रत्न मुकुट नहीं है, मयूर पूछे मयूर पूछ चरण में धर दिए, फिर भी नहीं माने, बोले वो मेरे पास और है क्या, एक संपत्ति के कर एक छोटा सा बांसुरी है मुरली है उसको निकाल करके फेंट से उसको भी धर लिए अपने चरण राधा जी के चरण में, आपने बांसुरी आपने मोर पूछ उनके चरण में दे करके उनके चरण में पड़ करके हाथ पकड़ करके रो रो करके भगवान प्रार्थना कर रहे हैं, हे श्री राधे अब तो मान जाओ अब तो मान छोड़ दो, तभी नहीं मानने बोले छोड़ो, अब मैं शरणार्थी बन करके आपको प्रार्थना करता हूं कि आप कृपा करके आपके श्री चरण मेरा सर में रख दो और मुझे माफ कर दो, ये जब प्रार्थना किए स्मर गरल अखंडनं मम शिरसि मंडनं दही पद पल्लव मुदारं, मेरे जो तप्त काम भाव को अतृप्त कीजिए, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम मेरा सर को आपके चरण के द्वारा मंडित कीजिए, दही पद पल्लव मुदारं अपने हाथ से राधा जी के नीचे पड़ करके उनके चरण को लाकर अपने सर में धर दिए, दही पद पल्लव मुदारं, ये बात जब देखे तो जयदेव गोस्वामी की कलम रुक गया, ये कैसे लिख सकता हूं, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक लोकाधिपति भगवान कृष्ण चराचर विश्व के आध्यात्मिक भौतिक सभी जगत के मालिक वही है, एकमात्र पुरुष बाकी सब उनके दासी हैं, राधा जी तो उनके शक्ति हैं, एक शक्ति एक दासी के सामने साक्षात मालिक साक्षात प्रभु इतने गिड़गिड़ आएंगे इतने भीख मांगेंगे उनके सब कुछ चढ़ा करके चरण में उल्टी गिर पड़ करके उनके चरण ला करके सर में धरते हैं बोलते हैं कि मुझे माफ कर दो, वही टू मच ऐसे कैसे हो सकता है, अब ये अपने प्राइवेटली तो ऐसा हो भी नहीं सकता, लेकिन मैं इसको कैसे डिस्क्लोज कर दूं दुनिया में कैसे बोलेंगे, दुनिया लोग क्या बोलेंगे, बोले यार ये कृष्ण ये जगत के ठाकुर है मालिक है ये तो दासी है उनके, उनके सामने इतने नो 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 ये बहुत ये बात है इसको तो नहीं लिख सकते हैं, तो बहुत लिखने से देख रहे हैं इस बात को, लीला को देख ही रहे थे, लेकिन लिखने के लिए मन नहीं कर रहा था। पेन डाउन कर दिए, उठा करके बड़े तकलीफ में लगा हमको, क्या करो क्या करो, बार बार लिखे ना लिखो ना, इसे किसे लिख सकता हूं, गोविंद को इतने निम्न इतने छोटे इतने, इसे किसे में कर सकता हूं। तो बैठ के बोले बाद में सोचते हैं, देखते हैं, ये लाइन लिखे नहीं, यहां तक लिखते आए थे, इस लाइन को जब देख रहे हैं उसको लिखे नहीं। बोले ना ये तुम्हारे से अपराध ना हो जाए आगे से, मैं जो लिख रहा हूं रिकॉर्ड रह जाएगा युग युग तक, भगवान को इतने छोटे बना दूं। वो रख दिए पेन, आकर के थोड़े व्यस्त सर देखे, पद्मावती बोले स्वामी क्या होगा, नहीं वो ठीक नहीं रखा, सर गर्म हो गया, मैं स्नान करने जा रहा हूं, तेल लाओ। तेल ला कर दी, तेल लगा करके अब निकल गए स्नान करने के लिए, प्राची गंगा है, गंगा स्नान करने के लिए निकल गए। निकल गए और वो बेचारी अपने बना रही कुछ कुछ, जो भी साग भात बना रही है, बनाएगी भोग लगाएगी और पति आएंगे स्नान करके खाएंगे और उसके बाद वो पाएगी, उनका तो नित्य नियम था। वो बेचारी व्यस्त है घर का काम, पति चले गए स्नान करने। अब थोड़ी देर में देखा कि पति आ गए, अरे नहीं 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 मुझे उस याद आएगा लिखने के लिए, और स्नान बाद में करेंगे, अभी लिखना है। ठीक है आप जाकर उठ करके उनके जो लिखने सज ला कर धर दिए, बोले बैठो लिखो, मेरा अभी कुकिंग पूरा होने वाला है, भोग लगाता हूं। तो बैठ कर लिखने लगे कुछ, वो कहे अपना काम में लग गई उनको दे करके समय, तो बैठ कर लिखा पढ़ के लिख करके फिर बोले कि पद्मावती कुकिंग हो गया क्या, ना भोग लग गई ना, अच्छा समय हो गया तो प्रसाद ना आप बैठी, स्नान बाद में देखा जाएगा, भूख लग रही प्रसाद पाले। तो घर में तो कोई बर्तन तो होता नहीं था, जा करके केला के पत्ता काट के ले आई, ले आ करके बिछा करके, और जो भी राजभोग तो दो ही आइटम होता है उनका, पांच सात प्रकार के चावल मांगकर जो लाती है उसको बॉयल कर देती है, और इमली की चटनी या साग ऐसे कुछ जो भी होता है धर दी, अफरिंग करके लगा दी प्रसाद पाई, बैठ करके आलट पंखा करने लगी। और फिर चाहिए और चाहिए थोड़ा चटनी साग थोड़ा राइस परिवेशन करने लगी, वो खाने खा करके बोले अब मैं जा रहा हूं। तो जैसे चले गए तो उन्होंने वही झूठे पतल बैठ करके बस खाने लगे, जो थोड़े बहुत धाग मिला करके खाने लगे। बोले बैठ के खा रही है इस समय उनके जो पतिदेव आ रहे हैं स्नान करके, आ करके गेट पर खड़े होकर के अद्भुत नेत्र निकाल कर देख रहे हैं आश्चर्यचकित होकर के। पद्मावती देखी ये क्या हो गया आपका, ऐसे क्यों देख रहे मुझे, ऐसे मुझे क्यों देख रहे ना। पद्मावती आप ठीक ठाक है ना, ना मैं तो ठीक हूं खा रही हूं, क्या आपको इतने आश्चर्य क्यों लग रहा है, आज तो कोई व्रत तो नहीं है, फास्टिंग तो नहीं, मैं खा रही हूं ना। नहीं मुझे आश्चर्य इसलिए लग रहा है कि अभी तक जब से तुम आई हो मेरे साथ कभी एक दिन नहीं हुआ कि मेरे से पहले तुम खा लो, हमेशा तेरा नियम है कि मैं खाने के बाद मेरे उचिष्ट को तुम ग्रहण करती थी, आज तो मैं स्नान करके आ रहा हूं आप तो बैठ के खा रही है। बोले ये क्या बकवास कर रहे हैं आपने, आपको खिलाने के बाद आपको उचिष्ट में खाई रहा हूं, आप खाकर निकल गए अब आकर बोलते हैं कि मैं खाई नहीं, इसी किस बात कर रहे हैं। उनका आश्चर्य किसी और बढ़ गया, क्या मैं खा और क्या, मैंने खुद आपको खिलाई, खुद पंखा की आपने परिवेशन की, आपने भरपेट खाए, बोले मैं अभी जा रहा हूं नहाने के लिए, खाने के बाद गए अब इतनी जल्दी से आ गए, आकर के बोलते मैं खाए नहीं, झूठ क्यों बोल रहे, आप तो खाकर गए, आपके बदल तो मैं खा रही हूं। क्या मैं खाकर नहा, हमारे बर्तन साफ हो चुका है, आप खाके गए तब मैं खा रही हूं, आप कैसे बोल रहे हैं। तो बोले अरे तो फिर कौन आया, मैं तो नहीं आया, तो मैं तो खाया ही नहीं, अब तुम बोलते है कि तुम मुझे खिलाई ना, मैं तो खिलाई आपको ना, मैं तो नहीं खाया ना, हो कैसे सकता, अभी आप खा करके गए, मैंने स्वयं आपको बैठ करके परिवेशन किया, अलट चामर किया, आओ बैठ के खिलाया आपको। बोले मैं केवल खाने के लिए आया था ना, और भी किया, नहीं नहीं आपने तो वापस आया, बोले मेरे कुछ पद याद आएगा लिखने के लिए, मैं लिखने सजन दिया, बैठ के लिखा पड़ी किए, फिर बोले कि हो गया क्या, मगर हाँ भूख लग गया, तो बोले ठीक है मैं प्रसाद पा लेता हूँ, तो प्रसाद पाए अपने। उनका आश्चर्य जो बोला अच्छा मैं आकर लिखे था और क्या, आपने लिखने के बाद फिर खाया, तब आपने गए लिखने के जहां रखा हुआ था सच, जा करके खोल करके देखे कि जो लाइन को लिखना चाहते थे, बहुत प्रयास करते थे, लिखा नहीं जाता था उनसे ये भाव को, बड़े सुंदर अक्षर से लिखा गया। वो अक्षर तो कोई भौतिक पुरुष तो नहीं, साक्षात परम पुरुष आके लिखे गए हैं उनके रूप में, उन्हीं के हैंडराइटिंग में लिखा गया है वही दो लाइन, स्मरागरण खंडनंग मम शिरसि मंडनंग दही पद पलव मुदारंग, ये भाव दो लाइन उन्होंने लिख दिए। जब ये उनका हैंडराइटिंग तो नहीं है, समझ गए कि मैं इतने सुंदर कहां लिख पाऊं, ये तो ठाकुर जी के हाथ लिखा है, तो ठाकुर जी क्या मेरे रूप लेकर के आकर के लिख गए, लिख गए और खा भी गए मेरे भजन। अब उसको देख करके ये पद को, जिस पद को उन्होंने लिखना कभी नहीं चाहते थे, ठाकुर जी को इतने छोटे कैसे बना दूं, और ठाकुर जी स्वयं आकर लिख गए, उसको देख करके उनके आंख से आंसू आ गया, उसको मस्तक में लगा करके प्रणाम किए, बोले हे प्रभु आपने सचमुच ऐसा किए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, सचमुच जब इतने छोटे हो गए राधा जी की सब कुछ समर्पण करके उनके चरण ला के अपने सर में धर दिए, और मैंने लिख रहा था आप स्वयं आकर लिख रहे हैं, बोले नहीं ये फैक्ट है, क्यों छिपा है, सच बात तो सही, तो सही नहीं आप लिख गए। अब उसको देखकर बड़े कृतकृत्य हुए लिख करके, तो प्रमाणित हो गया कि ये लिखा तो मैं नहीं लिखा था, मैं इसी की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया था स्नान करने के लिए, लिख कैसे गया, ठाकुर जी के लिखा आकर स्वयं लिख गए, तो इतने कृतार्थ हुए। तब लिखनी और कलम रख करके वापस मुड़े, पत्नी खड़ी थी, क्या चल रहा है भैया, वो लिखनी लेकर रो क्यों रहे हैं, रोमांचित हो रहे हैं। अब लिखनी रख करके मुड़ी पत्नी की ओर, धड़ाम से पत्नी के चरण में गिरे, ये बोलती ये क्या कर रहे हैं भाई, ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं। नहीं पद्मावती, जिंदगी भर मैंने साधन तपस्या किया, भजन किया, स्मरण चिंतन किया, लेकिन ये सौभाग्य मेरा नहीं हुआ कि मैंने प्रभु का दर्शन स्पर्शन कर पाऊं। मैंने जीवन भर किया, इतने गीत रचना किया, इतने साधन, इतने तप किया, सब कुछ किया, तूने तो एक सब कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हारा सौभाग्य यह है साक्षात भगवान कृष्ण को आप दर्शन किया, उनके अलावा बातचीत किया, उनको स्पर्शन किया, उनको खिलाई पिलाई, उनके झूठन भी खाई सारे, अब मैं भी नहीं खा सकती, सब कुछ पूरा मेरिट आपका गया, मैं तो फंका दू खाली खाली रह गया, मैं क्या बात करना है, साक्षात भगवान आए थे, मैं तो नहीं आया था ना, कैसे आप तो, मैं तो आपके दासी हूं, आप ही तो ठाकुर जी है, गोसाई है, आपने सब कुछ कर ना, चूल्हा में जाने दो गोसाई ठाकुर फिकुर कुछ, मैंने तो इतने सब कष्ट करके साधन बाधन किया, और मुझे तो सौभाग्य नहीं मिला, तू मेरे सेवा करती थी इसलिए ठाकुर जी आपको दे दिए। ये सिद्धांत इधर होता है, अगर कोई स्वयं साधन भजन नहीं कर पाए ठीक है कोई बात नहीं, जो साधन भजन करते हैं ऐसे कोई भक्त की सेवा में आपने को समर्पित करके लग जाए, जो भक्तों की सेवा में लग जाएगा उनके टिकट तो कंफर्म होगा, और जो भक्त है उनका तो वेटिंग लिस्ट रहेगा पता नहीं कब। आप स्वयं भगवान ने लीला करके दिखा दी पद्मावती बिचारी, अब जब से आई उनके सेविका बन करके, तभी से जी जान लगा करके कुछ उनका जीवन में आनंद नहीं, सुख नहीं, भिकारिणी बन करके उन्हीं के सेवा में लगी थी बिचारी, उनको क्या भगवत चिंतन में मंदिर गान भजन कुछ नहीं कर पाई थी बिचारी, करने के टाइम नहीं थी, सब कुछ संभालना था, सब कुछ करना था, व्यस्त थी, दिन भर इसी में रहती थी, बस अंत में पति सो जाने के बाद उनके चरण में सो जाती थी, कोई बेडिंग बेडिंग में नहीं था, कुछ भी नहीं था। इस प्रकार पति सेवा में अपने जीवन को निस्वार्थ जो दे दी थी, तो भगवान स्वयं उनके घर में प्रवेश करके, उनके घर भी तो नहीं था, उनके स्थान में प्रवेश करके उनसे बातचीत किए, उनको दर्शन दिए, उनसे प्रसाद खाए, और उनके उचिष्ट प्रसाद भी उन्होंने पाए। जयदेव गोस्वामी बोले मैं फांका रह गया कुछ नहीं। तो इसी जयदेव गोस्वामी जो भगवान ने जो उनके रूप लेकर के उनको पूरा किए थे, उसके बाद में कहते हैं कि प्रसन्न हो गए, बोले कि भगवान ने सैंक्शन कर दी, इस गीत को पूरा लिखे उन्होंने। लिखने के बाद उसको कब पढ़ते थे उन्होंने, प्रत्येक छंद को, प्रत्येक गीत को अलग अलग छंद में लिखे थे, कभी कभी स्वयं पढ़ते थे बैठ करके, वो तो घर काम करते थे, अब भगवान ने आ करके सुनते थे। इतने भगवान ने जयदेव गोस्वामी के इस गीत के प्रति आकृष्ट हो गए। ऐसे घटना घटा था पुरी में, एक विधवा स्त्री थी और बेचारी गरीब थी, उनका एक छोटी सी खेत थी, उसमें बैगुन, जानता ना बैगुन, वो बैगुन की खेती की थी और उसको बड़े ढंग से बैगुन खेती करके उसमें से सुबह सुबह उठकर जाके बैगुन निकालती थी, जो होता था एक बास्केट में लेकर के बाजार में बेच कर आती थी, जो भी 2-5 रुपया होता था उसी में अपना गुजरान चलते थे, अकेले खाते, और डेली डेली बस बैगुन में पानी देना, टेक केयर करना, फिर बैगुन तोड़ के लेके बेचना होकर। अब बाकी सब बीजे जब बैगुन तोड़ने लगती थी, जब उठा उठा कर देखी बैगुन खेत के अंदर जा करके, तब एक लाइन उनको याद था, गीत गोविंद से सुनी थी, उसको गाती थी अपने मन से, कोई म्यूजिक नहीं, हारमोनियम मृदंग करताल कुछ नहीं। धीर समीरे जमुना तीरे बसती बने बनमाली, धीर समीरे जमुना तीरे बसती बने बनमाली, बस इतना ही जानती थी और आगे पीछे कुछ नहीं जानती थी, अनपढ़ है गवार बेचारी विधवा, बस उसी को गाती गाती मस्ती से बैगन तोड़ती थी, निकालती थी अपने खेत में। अब जगन्नाथ जी को सहन नहीं हुआ, बोले वो पद गाती है, इतने उनको लगा कि नहीं, सुनने के लिए बड़े सुंदर गाती। जगन्नाथ जी अपने रत्न सिंहासन, अपने श्री मंदिर छोड़ करके दौड़ के चले गए, सुबह से उठ करके वो बैगन तोड़ती थी, अब धूप आने से दिन होने से जाकर बेचना पड़ेगा उसको मार्केट में बैठ करके, तो सुबह सुबह भगवान ने अपने सिंहासन छोड़ के भाग जाते थे बैगुन के खेत में उनके, और उनके पीछे पीछे चलते थे, वो बेचारी चलती थी कहीं बैगुन नहीं, इधर नहीं, ये छोटा है कल, ऐसे करके तोड़ती उनके पीछे पीछे, पर सुनते सुनते बड़े तृप्त होकर के जगन्नाथ जी चलते थे। अब एक बार उन्होंने लेट तक थोड़ी सूर्योदय हो गया, जल्दी से लेकर आना था, और फिर वो बंद करके बोले वो टाइम हो रहा है जाना है बाजार, चली गई, तो भगवान ने भी जल्दी बोले मेरे भी सकाल धूप का उपल धूप का समय हो रहा है, पुजारी लोग आएंगे, वो भी दौड़ करके आ गए, भगवान दौड़ कर आ गए, उनका उत्तर ही रह गया, भगवान भागे, बैगन पेड़ में जानते ना कांटा भी होता ना पत्तल में, कांटा भी था तो कांटा में फंस गया उनके पीत वस्त्र, उनके उत्तर ही वो बैगन के खेत में रह गया, भगवान आ गए बैठे। सुबह पुजारी आया, बोलते भगवान का अंग वस्त्र कहां गया, भगवान का अंग वस्त्र जो नहीं है, नहीं है। आ परेशान हो गया, मंदिर तो बंद था, अभी हम सुबह आकर के पूजा कर रहे हैं, भगवान की पाट वस्त्र कौन ले लिया, अंग वस्त्र कौन ले लिया, आप खोज तमाम चलने लगा, राजा के रूपट होने लगा, खुद भगवान का अंग वस्त्र कहां चला गया, कौन लिया, जितने पुजारी से पकड़ पकड़ कर लाए, बोले बदमाशी सच बताओ, कोई ले कोई आ नहीं सकता, सुबह तो चाबी 32-36 लोग आते तब जाकर खुलता है, तो कौन किया, जो पूजा पंडा जो साइन दिया था मदिरा था सबको बुलाए, बोले जी हम नहीं किए, राजा ने आकर ठाकुर जी के पास सब निभरा, उन्होंने बोले ठाकुर जी क्या कर दिया, आपको वस्त्र कहां छोड़े हमको, तो ठाकुर जी सपने बोले नहीं नहीं आपको क्यों परेशान कर रहा है, मेरा वस्त्र पड़ा है ना, आप लेकर आ जाओ, वो बैगुन के खेत में है, हैं बैगुन के खेत में कहां पे, वो भगवान ने एड्रेस बताया, बोले जाओ वो बुढ़िया के घर के पीछे जो बैगुन के खेत है वहां, मैं छूट गया, मैं जल्दी से आ गया दौड़ करके, हटुक के वो कांटा फंस गया, आप जाते हैं बैगुन के खेत में ना, मैं डेली जाता हूं क्यों ना, डेली सुनने जाता हूं क्या करूं, इतने मुझे अच्छा लगता है, इतने आनंद प्राप्त करता हूं, तो आप लोग तो गाते नहीं, मैं चला जाता हूं बैगुन के खेत में गाने के लिए, अब मैं दौड़ करके आया बैगुन के पेड़ से कांटा लगा, देखो मेरा उनके शरीर से कई जगह से ये हो गया था, होता ना कांटा फंड जो भाग कर आते हैं लग जाता है, बोले ये भी हो गया, लेकिन आप सेवा के लिए आप लोग ये करे, मैं दौड़ के आ गया, लेकिन मैं डेली जाता, बाप रे बाप, जिसे राजा को ये बात कहे, राजा बोला है झूठ बोलते, राजा जी चलिए हमारा यही आदेश मिला, आप चल के देखते हैं, चलो सब मिल करके गए, बुढ़िया बुढ़िया बोला कि क्या हो गया, मैं क्या दोष, मेरे घर में क्यों सारे? बोले आपके घर में नहीं, घर के पीछे जाएंगे। और घर के पीछे की बोले मेरे बैगुन के खेत है ना, खेत में जाएंगे। खेत में जाकर देखे भगवान की पाट वस्त्र पीत वस्त्र पड़ा हुआ, पीत पाट वस्त्र। आप बिचारी को उनको भी पता नहीं थी, वो तो आगे आगे चलती थी, पीछे पीछे ये उनको क्या पता है पीछे चलने वाले ने कांड किए। तब राजा जी ने बोले बुढ़िया अब आपका बैगुन की खेती खेती बंद, आप चलो डेली डेली तुझे गाना होगा ये लाइन को, नहीं तो ठाकुर जी हमारे मंदिर छोड़ के भाग जाते हैं। हम नहीं चाहते कि ठाकुर जी के बाद मंदिर छोड़ के जाए, उनका कपड़ा लटा कहीं खो जाए कुछ हो। तो ये पद को आप डेली गाना है तो आकर रहो, हम आपकी व्यवस्था करते हैं, आपको बैगुन बेचना नहीं पड़ेगा, हम खेती उठे क्या, आप ये पद को गाते रहना। अब तो बुढ़िया तो चली गई, परंपरा रह गई कि जगन्नाथ जी को वो गीत गाना ही पड़ेगा। केवल गाना नहीं कि जगन्नाथ जी वस्त्र छोड़ गए थे, वस्त्र लाए तो प्रसन्न होते, तो इसलिए इस परंपरा चल पड़ा नियम चल से कि जो भगवान के पाठ वस्त्र अंग वस्त्र होगा उसमें गीत गोविंद के पद लिखा रहेगा। उस पद को जब तक भगवान अपने शरीर में धारण नहीं करते गीत गोविंद पद को, तब उनको चैन नहीं होगा, नींद नहीं होगा। अभी भी गीत गोविंद खंडुआ आपको पूछेंगे जाकर पुजारी को, पंडित जैसे बोले हम गीत गोविंद खंडवा दिखाओ, तो दिखा के वस्त्र उसमें देखो लाइन लाइन लिखा होगा गीत गोविंद से पाठ वस्त्र। जब वो नहीं लिखा जगन्नाथ जी उसको चैन स्वयं नींद भी नहीं होगा, उनको गाएंगे सुनेंगे तो सही, उसको लिख करके धारण भी करेंगे वस्त्र में, इतने आत्मीयता था उस गीत के प्रति, इतने खुश होते थे। एक लाइन कोई टूटे फूटे बिना राग रागिणी में बिना ताल यंत्र में गा दे, भगवान इतने प्रसन्न होते थे। तो इतने भगवान की सुख कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो पद जो गीत जो रचना किए थे वही महानुभव भगवान के भक्त श्री जयदेव गोस्वामी। ऐसे उनके बारे में और भी कथा है, समय अभाव है। ऐसे उनको एक बार उन्होंने गए थे कहीं दुर्मुखी भिक्षा के किस्म गए थे, वो चोर पकड़ लिए उनको, चोर पकड़ करके उनको समझे, वो बोले मेरे पास कुछ नहीं है, नहीं यार तेरा पास बहुत कुछ है, पकड़ करके और नहीं माना, बोले मानेंगे नहीं, उनके हाथ पर काट दिए, दोनों हाथ दोनों पैर काट दिए, काट करके जंगल के अंदर के अंदर कुएं के अंदर डाल दिए, उनको डाल के चले गए। वो बेचारे तभी कुएं में इसी अवस्था में हस्तपदच्युत होकर रक्ताक्त होकर के हां गोविंद भगवान का नाम लेते थे। तो पड़े थे, तो दिन के समय में कोई राज कर्मचारी आता था वहां, वो देखा बोले आवाज आता है भगवत नाम कौन करता है, उन्होंने देखा कुआं के अंदर पड़े हैं, तो उनको बाकी लोगों को बुला कर्मचारी उठाए, उठाकर देखे इसी हालत है, तिलक चेतन कंठी धारण किए हैं, हाथ पैर कटा हुआ है और फिर भी उन्होंने भगवत नाम ले रहे हैं। तो इसी दशा देख करके दया करके उनको राजा के आए और ट्रीटमेंट कराए, हाथ पैर थोड़ा पट्टी पट्टी बांधे तो राजा के पास लेकर, राजा ने देखा बोले इतने हालत में भी आप भगवत नाम करते हैं। राजा ने उनको प्रणाम किया तो उन्होंने उपदेश किया राजा को, राजा तो मान लिया, बोला अरे आप तो साधारण पुरुष नहीं है, राजा ने आपने आपने को उनके दास माना, उनको गुरु बनाया, उनके राजभवन में रखा उनको। तो वही राज्य के लोग तो इसे बदमाशी चोर इसे किए थे, तो उनको गुरु जी पास रखा, बराबर उनको आता था, उनको सेवा पूजा करता था, उनको पट्टी पट्टी करता था, हाथ पैर कटा हुआ था। तो उनको एक दिन बोले आप कैसे इसे हुआ, कि वो नहीं बोलते थे, बोले मेरा भाग्य में ऐसा था दुख भोगना, नहीं बोलते थे। तो एक दिन बोले नहीं फिर भी आपको कभी शुरू से ऐसा था, कब आपका हाथ पैर तो होगा ना, ना था कट गया ना कैसे ना, आप ऐसा करो आप जानना चाहते तो एक भंडारा करो। तो उनका कहने से राजा ने बहुत बड़ा भंडारा की व्यवस्था किया, बोला आपका राज्य से सारे लोग को बुलाओ, सब आए, सब भरपेट प्रसाद पाएंगे, वो गिफ्ट दक्षिणा भी लेकर जाएंगे, सब सब कुछ छूट था। तो राजा का पूरा राज्य में विशेष भंडारा किया, सब लोग आते थे, हजारों लाखों संख्या में लोग आते थे, जो लोग आते थे वो राजा के गुरु जी उनके पास, उन्होंने कराए तो उनके पास प्रणाम करके जाते थे, जाने से गुरु जी बोलते उनको ये दक्षिणा दो, उनके भेंट दो, भेंट दिया जाता था सबको गिफ्ट आइटम। तो हुआ क्या, वो जो चार चोर थे जिन्होंने उनको मार करके हाथ पर तोड़ करके काट करके फेंक दिए थे, वो भी आए थे, वो भी सादा सिंपल सिविल ड्रेस पहनकर सज्जन बनकर आए थे, लेकिन पहचान तो लिए थे उन्होंने, वो भी उनको पहचाने, वो भी उनको पहचाने। अगर जब देख दिए वो आए थे खा करके जब जाते समय देख लिए बोले अरे यही तो है, वो भी देख लिए उनको दोनों दोनों को पहचान लिए। जब पहचान लिए उनका तो हार्ट बीट बढ़ने लगा, पता नहीं राजा को बोल देगा तो गया हमारा तो मर्डर कर लेगा, तो बदला लेगा, पहचान लिया तो वही है राजा के गुरु बनकर बैठा है, यही तो है। तो भी उनको पहचान लिए तो राज कर्मचारी को बुलाकर बोले ये जो चार है ना वो विशेष मेहमान है, उनको बहुत ज्यादा उनको दो, उनको बहुत कुछ उनके वस्त्र अलंकार धन बहुत कुछ दिया, उनको दूसरे से जितना देता था उनसे कई 20-25 गुना ज्यादा, इतने सारा दिया कि उन्होंने उठा नहीं सकते थे। तो उनको बोला आप लोग साथ में जाकर उनके घर में दे आओ। तो चारों चलते थे उनके पीछे, तो पूरा पेटी भर करके दो दो सेवक सर में लद करके आइटम लेकर के गए। रास्ता में पूछते हुए आप क्या है, क्या संबंध है वो उनके साथ, आपके लिए इतनी व्यवस्था क्या, राजा के इतने सारे अलंकार धन आपको दिया, क्या बात है। लेकिन जो दुष्ट है वो दुष्ट तो इतना आसान से तो जाता नहीं, उन्होंने बोले हम मन में डर था बताना दे, तो राज कर्मचारी के बताए बोले आपको पता नहीं क्यों दिया, बोले वो एक बदमाश है हम जानते हैं उनको, नंबर वन डाकू है वो, तो राजा को फंसा करके गुरु बनकर बैठा है, हम जानते हैं उसको, हम उनका पोल खोल देंगे, इसलिए हमको ना कहें हमको दबाने के लिए इतने सारे दे रहा है ब्राइब। जैसे बात कह रहे थे हठात आकाश से वज्रपात हुआ, वज्रपात हुआ चारों को चारों मर गए, धर्म सहन नहीं कर पाया इतनी दुष्टता को। उन्होंने कितने वदान्य है राजा को न बता करके, उन्होंने सोचते थे क्यों इनके इतना दूर राज कर, नहीं नहीं उनको धन का अभाव है इसलिए उनको ज्यादा दीजिए, मैं जानता हूं उनको, क्योंकि चोरी किए थे धन के अभाव के कारण चोरी करते हैं, इसलिए उनको बहुत अधिक धन दिया गया। लेकिन ये दुष्ट उनको समझे नहीं, उनको भाव को उल्टी उनके ऊपर ही आरोप कर रहे थे, तो इसलिए देवता लोग सहन नहीं कर पाए, वज्रपात में चारों को मार दिए। अब जब वापस आए वो लोग बोले तो चारों मर गए, इसे हम कहते कहते आकर रिपोर्ट करने के लिए संपत्ति लेकर आए, देखे तो उनका हाथ पर फिर निकल चुका था भगवान की कृपा से, फिर ऐसे हो चुका था। तो इसे जयदेव गोस्वामी केवल भगवान के निजजन उनके लिए रचना नहीं किए थे, आपने स्वभाव से आपने आचरण से कितने सहनशीलता कितने उदारता होना चाहिए, भजन में भक्ति में कितने हद तक हमको सहन होना चाहिए। देख राजा के गुरु थे, अगर राजा के बोलते उनका ऐसी तैसी कर देता, लेकिन नहीं नहीं बताए, आपने कुछ दुख दिए थे हाथ पैर काट कर फेंक दिए थे, उनको भी उन्होंने उनका नाम ना बता करके उनको अशेष धन रत्न दे रहे थे उल्टी, इतना उदारता इतनी सहनशीलता किसका, ये है भक्त के भाव, उसको दिखाए थे अपने चरित्र में, इसलिए देवतालों को आकर के उनको मार के उनको हस्तपर दे दिए थे। ऐसे कथा है उनके पत्नी के लिए भी, पद्मावती के लिए, वो तो कहती थी जब वो पति चले गए पता नहीं बिचारा रोती थी कहां गए, लेकिन मन में विश्वास होती कि पति तो आएंगे पति आएंगे, और रानी ने बोली पति थोड़ी आएंगे, वो उनके साथ बातचीत करती थी, बोले नहीं पति नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रह सकती हूं, मेरा जीवन तो उन्हीं के लिए है, वो नहीं रहेंगे मैं जीवन धारण नहीं कर सकती, मैं मर जाती, मैं जी कर हूं मेरा विश्वास है कि पति होंगे नहीं तो मैं कैसे जिंदा हूं। तो रानी को चिढ़ गई, बोले ये विशेष बात करते बड़ी बड़ी बात। तो एक दिन खबर दी, बोले देखो कोई डेडबॉडी लगा, बोले देखो ये पति मर गए, ये सुन करके धड़ से मर गई पद्मावती ने, तो हल्ला हो गया मर गए। तब फिर उनको बुला करके जो राजा गुरु रूप में बैठे थे उनको बुलाकर बोले, तब फिर उन्होंने जैसे आए बुलाए पद्मावती तो फिर जग उठी। ऐसे वो कितने पति के प्रति समर्पण, और जिसके कारण उन्होंने कुछ भी नहीं की भगवान की दरस परस पाली, और पति भी कैसा है जिनके लिए जीवन समर्पण करना चाहिए। तो इसलिए जयदेव गोस्वामी पद्मावती केवल भगवान के भक्त नहीं थे, एक कवि नहीं थे, ऐसे भक्त के रूप में जो अपने जीवन में जो आचरण करके दिखा गए व्यवहार के द्वारा, युग युग तक हम जैसे पतित लोग के लिए दिग्दर्शन बना रहेगा। उनका कोई एक भी आचरण कोई एक भी क्रिया मुद्रा को अगर हम जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्ण। श्री जयदेव गोस्वामी की।